मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। ग्रेस बाइबल चर्च आरावाला में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम को सीखना शुरू करें, उसका शुक्र करेंगे आज के दिन के लिए, उसका शुक्र करेंगे कि उसने हमारे लिए ऐसी नेमतें और ऐसे वादे मुहैया किए हैं जो हमारी तमाम कमजोरियों के बायस, हमारी तमाम नाकामियों के बायस जो इंसान होते हुए हम करते हैं, वो अपने तक हमारी पहुंच करवाता है। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में आया है पहला यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी नामी आयत के मुताबिक अपने अपने दिलों की हालत का जायजा लेने की जरूरत है, ताकि किसी किस्म की कोई सोच ख्याल जो हमें भटकाते हैं और खुदा के कलाम को समझने में और उस पर पूरी तवज्जो देने में हमारा ध्यान बटाते हैं, उन सबको दूर करते हुए सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के तरफ अपना ध्यान लगाएंगे और कहेंगे कि खुदा पाक रू तू हमें सिखा। सब शख्सी तौर पर खुदावंद के हजूर झुक जाएं। और हर एक के लिए मौका है कि अपने अपने दिल की हालत का जायजा ले। किसी को दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं, खुदा का कलाम सुनने की जरूरत है और सिर्फ खुदावंद को अपने सामने रखने की जरूरत है कि वो यहां पर मौजूद है, क्योंकि उसने कहा है जहां दो या तीन उसके नाम से इकट्ठे होंगे वो उनके दरमियान मौजूद होगा। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के मुकद्दस दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में दिया, ताकि जमीन पर रहते हुए तेरे नाम की सताइश करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, और सबसे बढ़कर तेरे जिंदगी बख्श कलाम में से खुदावंद खुदा सीखें कि तू हमसे क्या चाहता है, किस लिए तूने जमीन पर हमें छोड़ा है, और उन तमाम बरकात को जो तूने दी है बड़ी खुशी के साथ इस जमीन पर मुसर्रत के साथ मनाने वाले ठहरें। सबको बड़ी बरकत दे और आज जो कुछ भी तेरे कलाम से सीखें हम सब के लिए बरकत का बायस हो, यीशु मसीह के नाम में आमेन। जैसा कि हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं नए अहदनामा में से, और हमारा मजमून है सेट यानी के बैठना, यानी के यीशु मसीह में बैठना शगिर्द की हैसियत से। और इसका जो हमारा बुनियादी मकसद है वो ये है, और इसका जो मजमून है सिट का, मसीह यीशु में हमारी मुकामी हालत क्या है। और आज हम फिर इफिसियों दो बाप 14वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़ेंगे और इस पहरे को, इस हवाला को हम पढ़ेंगे, क्योंकि 18वीं आयत पर आज हम सीखेंगे और ये 14वीं आयत से 18वीं आयत तक मुकम्मल हवाला है। सो मेरे साथ निकालें इफिसियों दो बाप उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाब्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाया, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के लिए उसका शुक्र हो। हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सीख रहे हैं कि मसीह यीशु में हमारी हालत, हमारा मकाम क्या है, और हमने पिछले दिनों में सीखा था कि यीशु मसीह ने सुलह करा के जो जुदाई की दीवार थी 14वीं आयत में से, वो उसने बनी नू इंसान के दरमियान में से गिरा दी, और वो दुश्मनी उसने अपने जिस्म के जरिया से सलीब पर अपनी मोहब्बत जाहिर करके वो दुश्मनी मिटा दी, और वो कानून और वो जो रस्में और जो फरमान थे जो बनी नू इंसान पूरा नहीं कर सकता था और उनके करने से अगर वो 10 कानून भी पूरे करे या 10 अहकाम भी पूरे करे और एक भी तोड़े तो वो उनसे रासबाज नहीं ठहरता था। तो खुदा ने जो इंसान उन सारी नेकियों के बायस जो अपने आप को रासबाज ठहराने के लिए करता था उन सारे कामों के बायस फिर भी वो नाराज का नाराज ही रहा कि यसाया नबी कहता है हमारी रासबाजी गंदे लबास की मानद है क्योंकि हम सब आरजी हैं। इसलिए खुदा बाप के बेटे यसु मसीह ने वो शरीयत के हुक्म जो जाब्तों के तौर पर थे वो सब मकूफ कर दिए ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा कर दे। उसने हमें एक नई जिंदगी दी, एक नया इंसान बनाया, एक नई सोच, नया हुक्म दिया और नई उसने हमें वो हुक्मों की फरिश्त दी जो सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुदस की रहनुमाई में हम पूरा कर सकते हैं जो जिस्म से नहीं बल्कि रूह से मुमकिन है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमने सीखा है कि जो कुछ इंसान से नामुमकिन है वो खुदा से मुमकिन है और ये खुदा ने वो सारे जाब्ते सारे फरमान सारी रस्मों को दूर करके उस शरीयत को मकूफ कर दिया जिससे इंसान रासबाज नहीं ठहर सकता था, जिससे इंसान खुदा तक नहीं पहुंच सकता था। और उसने नया इंसान बनाया और हमने 16वीं आयत में देखा था ये सब कुछ हुआ सलीब पर उस दुश्मनी को मिटाने के बायस और उसने हमें बाप में और अपने आप में एक तन यानी के कलीसिया बनाया यानी के उसका बदन उसकी दुल्हन बनाया जिसके लिए उसने अपनी जान सलीब पर दी। और हमने इसके लिए देखा था कि किस तरह होशिया नबी अपनी जिंदगी से यसु मसीह की शख्सियत को जाहिर करता है, यसु मसीह की मोहब्बत को जाहिर करता है कि उसने बदकार और फाशा औरत से शादी की। बनीनु इंसान की हालत भी यही थी और खुदा ने अपनी मोहब्बत हमसे यह जाहिर की और हम दोनों को एक तन बनाकर किसे खुदावंद यसु मसीह ने एक तन बनाकर खुदा से मिला दिया। और 17वीं आयत में हमने देखा था पिछले दिनों में कि जो दूर थे जो नजदीक थे यानी के जो यहूदी थे और गैर यहूदी यूनानी इब्रानी दुनिया का कोई भी कबीला है अब उन सब के लिए यसु मसीह में ये सुलह का पैगाम है और वो सब यसु मसीह में एक हैं। वहां पर कोई फर्क और कोई दर्जा बंदी नहीं रही और ये यसु मसीह की वो रूहानी शरीयत है, ये वो यसु मसीह की मोहब्बत है और ये वो यसु मसीह के खुदावंद होने का बहुत ही बड़ा इस्तेहकाक है हमारे लिए कि हम उसमें एक बनाए गए हैं उस सुलह के पैगाम के बायस जो खुशखबरी उसने दी। आज हम 18वीं आयत को देखेंगे जिसमें लिखा है क्योंकि उसी के वसीला से उसी यानी के यसु मसीह के वसीला से जैसे यूहन्ना की अंजील 14वां बाप उसकी 6वीं आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर यसु मसीह अपने शिगिर्दों को ये बात सिखाता हुआ कहता है यसु ने उससे कहा यानी के फिलपस से और बाकी तोमा से बात करते हुए कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और यहां पर 18वीं आयत में पालूस रसूल इस बात को बयान करता है कि उसी के वसीला से हम दोनों की यानी के कोई यहूदी है कोई यूनानी है इब्रानी है किसी भी कौम और कबीला से है उसकी रसाई उसकी पहुंच किसके पास वसीला से होती है सिर्फ और यसु मसीह के वसीला से होती है क्योंकि यसु मसीह ही वो राह और हक और जिंदगी है जो बाप तक हमें पहुंचाता है। हम दोनों की एक ही रूह में यहां पर रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा जो ईमानदारों को मिलता है जब वो यसु मसीह पर ایمان لاتے ہیں اور روح القدس کے وسیلہ سے ہماری باپ تک پہنچ ہوتی ہے، باپ تک رسائی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں. اور بائبل مقدس میں بہت سی گہریاں سچائیاں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے. بہت سے لوگ دوبارہ دوبارہ بہت سے مہینے تڑپتے رہتے ہیں، کرلاتے رہتے ہیں کہ روح القدس ان کی زندگی میں نازل ہو نازل ہو. روح القدس آج سے 2000 سال پہلے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور 40 دن زمین پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے. وہ ایک ہی بار نازل ہوا اور اب وہ زمین پر ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہفتوں، مہینوں اور غیر زبانوں کا کوئی نشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف ہم دونوں کی ایک ہی روح میں، یعنی کہ جب یسوع مسیح پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان کے باعث روح القدس ایمانداروں کے اندر سکونت کرتا ہے، اور ایماندار اس کا مقدس بن جاتے ہیں، اور روح القدس کے وسیلہ سے ایمانداروں کی باپ تک رسائی ہوتی ہے. جب ہم روح سے معمور ہوتے ہیں اور دعا میں باپ سے ہماری رفاقت ہوتی ہے، تو خدا کا کلام جو سچا اور پاک ہے وہ باپ تک رسائی اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اور اسی لیے ہمیں بائبل مقدس یہ حکم کے طور پر کہتی ہے، یہ پالوس رسول یسوع مسیح کی طرف سے جو اسے حکم ملا ہے، افسیوں 5 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقعہ ہوتی ہے. یسوع مسیح نے صلیب پر نجات کے کام کی تکمیل سے خدا تک رسائی کو ممکن کیا. یسوع مسیح نے اپنے اس صلیب کے کام کے وسیلہ سے جو اس نے بنی نو انسان کے لیے کیا، باپ تک ہماری پہنچ، باپ تک ہمارے لیے جانے کا راستہ، باپ تک ہماری رسائی ہوئی، سادہ لفظوں میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ روح القدس کی معموری میں زندگی گزاریں، اور روح القدس کے وسیلہ سے ہماری باپ تک کیا ہوتی ہے، پہنچ ہوتی ہے. اس لیے بائبل مقدس ہمیں افسیوں 5 باب اس کی 18 آیت کے دوسرے حصے میں حکم کے طور پر کہتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. ایک بار نہیں بلکہ ہمیں ہر روز اس کے روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو ہماری رفاقت اس سے ٹوٹتی ہے، اور جہاں پر گناہ ہے وہاں پر خدا کا روح جو روشنی ہے، جو پاکیزگی ہے، وہ نہیں ٹھہر سکتا. اور داؤد نبی بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر گناہ ہوئے میری زندگی وچ تے خدا کدی وی نہ سنے میری دعا. وہ خدا جب ہماری زندگی میں کسی طرح کا گناہ ہوتا ہے، وہ ہماری دعا کو، ہماری آواز کو نہیں سنتا. اس لیے ہر روز روح القدس سے معمور زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور انسان ہوتے ہوئے جب ہم گناہ، غلطی، خطا کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا اور میں گناہ نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ ہم بولنے میں، سوچنے میں، دیکھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں گناہ کرتے ہیں، اور یہ ہے پرانی انسانیت جو مسلسل چاہتی ہے کہ روح القدس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری نہ ہو. اس لیے ہمارے لیے یہ بڑی ہی عزت کی بات ہے کہ روح القدس سے ہر روز معمور ہوتے جائیں، اور اس کے لیے سادہ سا حل ہے، اپنے آپ کو اس کے حضور خالی کرنا، خاکسار کرنا کہ ہاں میں گناہگار کے حالت میں تیرے پاس آتا ہوں، میں مسلسل جھوٹ بولنے میں، اپنے کاروبار میں، ہر جگہ مسلسل طور پر برے الفاظ استعمال کرتا ہوں سو مجھے پا کر، اور وہ پا کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ آج ہم اس آیت میں سے دیکھیں گے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا استحقاق ہے ایمانداروں کے لیے کہ خدا کا یہ فضل ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر یہ بخشش جاری کی کہ اس تک ہماری رسائی ہو، اس سے ہماری ہر روز ملاقات ہو، اور وہ اپنے فضل کی دولت سے ہمیں ہر روز نیا بناتا ہے، نیا بناتا ہے۔ اس کے پیچھے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ آج میں سادہ سا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے باب کو، افسیوں کے پہلے باب کی چند، پہلے باب سے کچھ باتوں کو سیکھیں گے جو ہمارے لیے بہت ہی برکت کا باعث ہیں۔ پالوس رسول پہلے باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے، پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح کا رسول ہے۔ پالوس بے شک کتنا بھی لوگوں کو ستاتا رہا، خدا کے لوگوں کی مخالفت کرتا رہا، یسوع مسیح پر جو ایمان لاتے تھے ان کو قتل کرنے پر راضی تھا، اور یہاں تک کہ ان کو مارنے پیٹنے اور سنسار کرنے میں بڑا خوش تھا، لیکن خدا نے اسے اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو اپنے لیے چن لیا اپنی مرضی کے مطابق، تاکہ وہ کیا اس میں اس کا رسول ہو، اسے یہ خدمت دی۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو خدا نے اپنی حضوری میں چنا ہے، جیسے افسس کے کلیسیا کے ایمانداروں کو پالوس رسول سلام کہتا ہے، اور خداوند خدا کے یسوع مسیح کی طرف سے انہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس طریقے سے پالوس رسول یونانی زبان میں اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ فضل اور اطمینان سلام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کہ انہیں سلام کہنا، ان کو خوش آمدید کہنا۔ اور وہ تیسری آیت میں کہتا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، یعنی کہ اس کی حمد ہر روز ہماری زندگی میں ہونے کی ضرورت ہے، ہر روز اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکتیں بخشیں۔ وہ برکات اتنی ہے کہ ہمارے سوچ سے کہیں بلند تر ہے، اور یہ وہ گہری سچائیاں ہیں جو ہم نے شاید پہلے نہ سنی ہو۔ وہ ہر روحانی برکت اس نے بخشی، چنانچہ اس نے ہم کو بنی عالم سے پیشتر اس میں چن لیا۔ اس نے پالوس کو ہی نہیں چنا بلکہ ہر ایک ایماندار کو، ہم کو، افسس کی کلیسیا کو نہیں، آج جو آپ بیٹھے ہیں، آج سے جو 10 سال بعد اس کلام کو سنیں گے، جو کہیں بھی ہیں، ان سب کے لیے خدا کا ایک منصوبہ ہے، لیکن ضرورت ہے کہ وہ اس منصوبے کو اور اس آواز کو سنیں، تاکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ تک رسائی اور تمام برکاتیں جو بائبل مقدس میں خاص کر افسیوں کے خط میں ایمانداروں کے لیے ہے۔ اس نے ہمیں چن لیا کہ ہم اس کے نزدیک محبت میں، اس کی محبت میں کیا بنیں، پاک اور بے عیب ہوں۔ اس نے ہمیں پاک اور بے عیب ٹھہرایا، اور یہ اس کی اپنی مرضی کے ارادہ کے موافق ہوا پیشتر سے کہ ہم اس زمین پر اپنی سانس لے۔ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، یہ خدا کے اس فضل کی نعمتیں ہیں تاکہ اس کی ستائش ہو۔ 6 آیت میں لکھا ہے، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ اس عزیز میں یعنی یسوع مسیح میں ہمیں یہ استحقاق اور یہ برکت مفت بخشی، اور یہ سب کچھ ہم کو اس کے خون کے وسیلہ سے حاصل ہوا، اور قصوروں کی معافی، اور اس فضل کی دولت جو بیان سے باہر ہے۔ اور یہاں پر بے شمار برکات ہیں، پہلے باب کی پہلی آیت سے 14 آیت تک، اور سب سے بڑھ کر جو آیت میرے دل کو بھاتی ہے، بائبل مقدس ساری ہی بہت उम्दा खुदा के कलाम की सच्चाई है, लेकिन आपके साथ एक आयत इसी हवाला से पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ पढ़ें, 13वीं आयत को पढ़ें। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदे रूह की मोहर लगी। जब हम पुराने दौर को देखते हैं तो जब किसी चीज पर मोहर की जाती थी, जब कोई चीज या खत लिखा जाता था उस पर मोहर की जाती थी, तो कोई उसे खोलता नहीं था क्योंकि वो उस मोहर करने वाले के को जानते थे, उसकी इज्जत करते थे कि वो कोई रोहब वाला बंदा है, उसने उसके पास बहुत बड़ा इख्तियार है जब किसी की मोहर की जाती थी। इसी तरह रूमी जब अपनी मोहर किसी कब्र पर किसी घर पर करते थे तो कोई भी उस मोहर के खिलाफ नहीं जाता था। और यहां पर जो बड़ी ही उम्दा बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो ईमानदार जब गुनाह करते हैं तो अपनी निजात खो देते हैं, और जब हम गुनाह करते हैं जो हम अनजाने में करते हैं तो हमारी खुदा के साथ रफाकत टूट जाती है। ये बिल्कुल ठीक है कि हमारी आर्जी तौर पर उसके साथ रफाकत टूटती है, लेकिन हम अपनी निजात नहीं खोते। जिस तरह रूमियों के दौर में जब मोहर की जाती थी, यीशु मसीह की कब्र पर जब उन्होंने मोहर की तो कोई भी उस मोहर के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत से वो मोहर तोड़ दी। लेकिन यहां पर उस पर ईमान लाए, पाक मौदे रूह की मोहर लगी। ये खुदा बाप की तस्दीक है, ये खुदा बाप की रूहुल कुदस की वो बड़ी बरकत है जो ईमानदारों को हासिल होती है। इसके लिए हमें गैर जुबान बोलने से या गैर जुबान होने से पता नहीं चलता कि गैर जुबान बोलेंगे तो फिर हमारे पास रूहुल कुदस है, और ये जाहरी निशान है, ऐसा कोई निशान नहीं है। रूहुल कुद्दस जैसे ही हम ईमान लाते हैं तो वो ईमानदारों की बदनों में सकूनत करता है, और उस पाक मौदे रूह की, उस रूहुल कुद्दस की मोहर बनी नू इंसान की जिंदगी में लगती है, ख्वा वो बच्चा है, बेटी है, भाई है, बाप है, उन पर खुदा बाप रूहुल कुद्दस की मोहर करता है और उनको अलहदा करता है, और उसके मोहर को कोई तोड़ नहीं सकता, और उसके इख्तियार के खिलाफ और उसकी कुदरत के मुखालफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। सो आज आप जितने इस बात को सुन रहे हैं, इस हकीकत से वाकिफ हो और बड़े दलेरी के साथ अपने मुखालफ को जो अबलीस है उसे जवाब दे सकते हैं, जो मुसलसल झूठ बोलता है, जो मुसलसल हमें मुजरम ठहराता है कि आपने बुरे अल्फाज कह दिए, आपने अपनी निजात खो दी और आप तो सिर्फ और सिर्फ दोजक में जाएंगे। ऐसे झूठों के लिए बाइबल मुकद्दस में ये हमारे लिए हजारों आयतें हैं, लेकिन ये आयत मैंने सिर्फ आपके लिए चुनी है कि उसने पाक रूह की मोहर हम पर की है, जिसकी मोहर को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये मकाशवा की किताब में यीशु मसीह के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और यीशु मसीह के खून के बायस रूहुल कुद्दस की मोहर यानी के रूहुल कुद्दस की रफाकत और शराकत हर एक ईमानदार को हासिल है। अगर मैं इस पर बोलते ही जाऊंगा तो बहुत कुछ है इस बाब में, लेकिन सिर्फ आपका ध्यान इस पर दिलाना चाहता हूं कि क्योंकि उसी के वसीला से, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमें हर तरह के वो कानूनों से, हर तरह की वो लानत, हर तरह की वो दूरी, हर तरह की वो जुदाई, हर तरह की नाउम्मीदी, वो सब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से दूर होती है, और हर एक को एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि हमने पिछले बाप में भी सीखा था कि हम उसका मकदस हैं, उसका बदन है, और उस बाप में भी हमने सीखा कि उसने दोनों को एक तन बना दिया। अब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालफ हो सकता है, कौन हमारे मुखालफ खड़ा हो सकता है। और इसके लिए रोमियो हमें 8 बाब में बड़े ही वाजह तौर पर पालूस रसूल हौसला अफजाई के तौर पर कहता है, पस हम इनकी बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालफ है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी जो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। उसने हमें हर वो बरकात यीशु मसीह में बख्शी है ताकि इस जमीन पर क्या करें, उसके नाम को जलाल दें, उसके नाम की ताजीम करें। और मसीह यीशु में हमारी मकामी हालत है कि उसने हमें आसमानी मकामों पर अपने साथ बिठाया है। इस जमीन पर उसके हमें इस जमीन पर उसका छोड़ने का मकसद क्या है, इस आयत पर खत्म करूंगा। इफिसियों 3:19 उसकी 19वीं आयत, इस पर हम बहुत गहरे से सीखेंगे लेकिन इस पर खत्म करूंगा। 19वीं आयत में देखें, इफिसियों 3:19 आयत, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। किस तरह हम आसमान पर तो उसे रूबरू देखेंगे, उसके साथ रफाकत होगी, उसको जानेंगे। इस जमीन पर छोड़ने का यहां पर उसका मकसद क्या है, और मसीह की उस मोहब्बत को जानो जो उसने क्या हमसे की है, जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। खुदा चाहता है कि हम वो तमाम बरकात से और वो कुदरत से जो हमें रूहुल कुदस की कुदरत बख्शी गई है, उस मामूरी में मामूर होकर खुदा की सारी मामूरी तक उसे जाने कि उसकी मोहब्बत क्या है, उसकी मोहब्बत क्या है। और रोमियो के खत में पालूस रसूल कहता है 5:5 में, पस जब हम ईमान से रासबार ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। आज बहुत से लोगों ने इस सुलह के बंध को तोड़ दिया है और अपने लिए बहुत से शिकस्ता हौज खोदे हुए हैं जिनसे खुदा खुश नहीं है। वो चाहता है कि जिनके लिए उसके बेटे ने अपना खून बहाया है, जिनके लिए उसने उस दुश्मनी को खत्म किया है, ताकि वो उस रफाकत में जिंदगी बसर करें और हर रोज हमारी बाप तक पहुंचो और बाप के साथ बातचीत हो। और यीशु मसीह ने भी यही कहा है, जैसे आप दुआ रबानी में पढ़ते हैं कि जब भी तुम दुआ करो तो कहो कि ए हमारे बाप। इस ए हमारे बाप कहने में इतना गहरा सच है कि अगर बयान करना शुरू करें तो बहुत गहरे तौर पर हम सीख सकते हैं। और बाप, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, यानी कि हमारी जमीन पर रहते हुए उसके साथ रफाकत है, उसे सुन सकते हैं, वो हमें बोल सब हमसे बोल सकता है, हमें अपनी राह दिखा सकता है। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक रसाई भी हुई, जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। इस फख्र में और इस उम्मीद में जिस पर कायम रहने से हमें जिंदगी बसर करने की जरूरत है, और ये वो खुदा का फजल है, और उस फजल के बायस हमारी बाप तक رسائی ہے، ہماری باپ تک پہنچ ہے، اور اس کا وسیلہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ کیونکہ کوئی کسی گناہگار کے لیے تو مشکل سے ہی جان دیتا ہے، شاید کسی دیانتدار کے لیے دینے کی جرت کرے، لیکن ہم جو گناہگار تھے یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی، تاکہ کیا ہو باپ تک ہماری رسائی ہو، تاکہ باپ تک ہمارا میل ملاب ہو اور اس کے نام کو جلال ملے۔ جیسے رومیو 5:5 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ باوجود جو دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد اب ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اس کے ساتھ میل ملاب ہر روز رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں کہیں بھی ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ صرف ایک دن اس سے رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی حوالہ ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اپنی صلیب کو ایک دن اٹھانا، ایک ہفتہ اٹھانا نہیں، ہر روز اپنی صلیب کو اٹھاؤ، ہر روز اپنی صلیب کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ صلیب ہماری زندگیاں ہیں، ہماری زندگیاں ہیں جو ہر روز خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی راستہ ہے، وہی راہک ہے، وہی زندگی ہے جس نے ہماری باپ تک پہنچ کروائی ہے۔ آج ہم آپ بہت خوش نصیب نہیں کہنا چاہیے، بہت بابرکت ہو کہ خدا نے آپ کو یہ بڑا استحقاق بخشا کہ ہر روز اس کے ساتھ رفاقت ہوتی ہے، اور دن میں کسی وقت آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ یسوع مسیح کی محبت کے باعث ہوا ہے جو اس نے کی ہے۔ آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو اس ساری خداوند خدا تیری محبت کے لیے جو تو نے یسوع مسیح میں کی۔ سب کو چھو، بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام میں سارے پیغام کو جو تیرے لوگوں تک پہنچا ہے، کثرت سے سب کے لیے برکت کا باعث ہو، یسوع کے نام میں آمین۔